बहरहाल अब अगला मसला है कि रसूल आए क्यों? ताकि हम उनके मिलाद मनाएं, हम उनके नाम पे झंडियां लगाएं? नहीं, रसूलों के आने का मकसद लोरियां देना नहीं, बल्कि रुसुलम मुबशरीन व मुनजरीन। ये रसूल भेजे गए बशारत देने वाले और खबरदार करने वाले बनाकर। यानी रसूलों के भेजे जाने का मकसद क्या था? कि नेक काम करने वालों को बशारते दे कि भाई तुम अच्छे काम करते हो। उबशिरु बिल जन्नतिल्लतिकुन तुम तू अदून नखनौलिया कुम फिल हयात दुनिया। सूरत हामीम सजदा की आयतें आती हैं कि जो बंदा नेक होता है उसको तो फरिश्ते की खुशखबरियां देते हैं। अब वो फरिश्ते की खुशखबरी आज कुरान में कैसे आई? रसूल के जरिए आई। अल्लाह के नबी बशारते दिया करते थे लोगों, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की बात करता हूँ, कहीं वो इद्दत लिल मुत्तकीन की बातें आती हैं। तो रसूल नेक काम करके अच्छे अंजाम की खबरें देते थे। इसी तरह वह मुनजरीन डराते थे, आगाह करते थे। इंजार, नुजुर। नुजुर कहते हैं बाप की शफकत को, किसी को इस तरह डांटना बताना कि उसमें मोहब्बत का रंग हो। जैसे माँ बाप सारा दिन लगे रहते हैं, ये खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ये नहीं पहनोगे तो सिक हो जाओगे, ये नहीं वो नहीं, ये सारी बातें अल्लाह ताला ने इसमें बयान करती है। तो रसूलों का काम सिर्फ पैगाम देना होता है। रसूल कभी भी इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर नहीं करते, बल्कि रसूलों का मामला बंदों के साथ सिर्फ मैसेज डिलीवर करना होता है। इसके ऊपर वन लिख लें, ठीक है? खुशखबरी और डरावा। दूसरी रीज़न रसूलों को भेजने की, आयत के अगले हिस्से में, ली अल्लाह यकून लिन्नासी अलल्लाह हुज्जतुम बादर रसूल, ताकि न रह जाए लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत रसूलों के आने के बाद। यहाँ आप लिन नास का जो लफ्ज़ है ना, लिन नास, इसकी लाम को नोट कीजिएगा और आगे देखिए अल्लाह के अला को। ये दोनों लिखेंगे तो फिर बात समझ आएगी, वरना ये थोड़ी सी ट्रिकी आयत है। ली किसके लिए आता है? फॉर के लिए, हक में है ना, आपके लिए ये चीज़ है। अलात अपॉन, अगेंस्ट के मानों में, ठीक है? तो लिन नास का माने क्या हुआ कि लोगों के हक में हुज्जत, ठीक है, लोगों के फेवर में, जबकि अल्लाह के मानी अल्लाह के खिलाफ हुज्जत। यानी अल्लाह ने रसूलों को इसलिए भेजा कि कल कयामत के दिन लोग अल्लाह के खिलाफ ये हुज्जत ना तमाम कर दें कि तूने कोई भेजा ही नहीं जो हमें पढ़ाता, कोई उस्ताद ही नहीं आया जो सिखाता, कोई स्कूल ही नहीं था जहां हम जाते, कोई मस्जिद ही नहीं थी जहां नमाज पढ़ते। बात समझ रहे हैं? यानी रसूल इतमाम हुज्जत के लिए आते हैं। अल्लाह सुबहान तआला रसूलों को भेजकर हुज्जतें तमाम कर देता है कि कल लोग ये ना कहें कि हम इसलिए जाहिल थे क्योंकि हमारे पास कोई आया ही नहीं। अब इस आयत को पढ़ते वक्त आपका दिल क्या कह रहा है? अल्लाह ने हम पे हुज्जत तमाम की? आज आपके पास अल्लाह ताला की रहमत से अगर एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है, कितना सुकून है आपके पास। इधर बैठे हैं, कितने सहूलतों से हम आके बैठ जाते हैं। कभी आपका दिल शुक्र से गया? आज जाने से पहले दो दो नफिल पढ़ के जाएं कि अल्लाह तूने हमें ज़मीन का ये गोशा इतने पुरसकून माहौल में बैठने को दे दिया। अल्लाह ने अपनी किताबें दे दी, कहाँ से चल के किताबें हमारे लिए आ जाती हैं। आपके सामने पारे ना होते तो आप पढ़ सकते थे? आपके लिए ये माहौल ना होता तो आप पढ़ सकते थे? मैं ना होती, कोई और भी ना होता, कोई टीचर ना होता, तो आपका इस तरह दिल लग सकता था? नहीं लगता। तो कभी नियमतों को फॉर ग्रांटेड ना लें। जो लोग मोहसिनों का हक अदा नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए ना तो अपनी जगहों से, ना अपनी किताबों से और ना अपने उस्तादों से कभी बदगुमान हो। कभी उनके बारे में दिल के अंदर भी आपके ख्याल आएगा ना, उनको कोई नहीं पता चलता, ना उनको केयर होती है, आपके अमल में फ़र्क पड़ जाएगा, आपके दिल का सुकून उठ जाएगा और हिदायत ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह का एक वादा है, अल्लाह ने बाड़ लगाई हुई है। क्यों नहीं हिदायत मिली अब्दुल्ला बिन उबई को? नमाज रोज़े के बावजूद दिल से अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ था। क्यों नहीं हिदायत मिली अबू जहल को? अल्लाह के नबी उसके हमजोली थे, उसके हम वतन थे, उसके इलाके के, उसके गांव के, उसके गिरां के रहने वाले थे, क्योंकि दिल में मोहब्बत नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने हुज्जतें तमाम कर दी हम पर भी। और दिल की गहराई से अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ये सारी नेमतें जो तूने मुझे इस वक्त दी हुई हैं, ये मेरे हक में हुज्जत हो, मेरे खिलाफ ना हो। हमारे जो प्यारे साथी इस वक्त भी नेट के थ्रू सुनते हैं, विज आई क्यू पे और पैल टॉक पे और दूसरे मीडियम पे, उन सबको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इस वक्त आवाज़ ब्रेक हो रही होती, नेट ना आज होता, आज कोई और मसला होता, तो क्या ये आयतें सुन सकते हैं? तो छोटी छोटी नेमतों को महसूस किया करें। अगर अल्लाह से छोटी छोटी बातों पे अजर लेना है, और अगर ये नहीं होगा तो याद रखिए कि फिर एक बंदा तो ना कदरा तो है ही है। हम तो बस जब अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, दूसरों की क्या बात करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें कदर वाला बना दे। वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, और अल्लाह जबरदस्त भी और हिकमत वाला भी है। अल्लाह हिकमतों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला की जात एक इंसान को जो देती है हिकमत से देती है, और इस सारी बात को अल्लाह सुबहाना ताला हमें समझाता है। ये जितनी भी बात अभी हुई है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए, यहाँ चुपके बात हुई है ना कि आखिरत में हमारे खिलाफ या हमारे हक में, थोड़ा से आखिरत के फलसफे को समझते हैं। मैं छोटे छोटे जुमले बोलूँगी, जो लिख सके लिखे। क्यामत के दिन हर किसी का इम्तिहान होगा, फिर नतायज निकलेंगे। कोई पास होगा तो कोई फेल होगा, ठीक है ना। लेकिन इम्तिहान से पहले कुछ पढ़ाया जाना ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है ना। किसी को जांचने से पहले इसको कुछ दिया जाता है ना, किसी का असेसमेंट करने से पहले आप उसको कुछ देते हैं ना। आप सोचिए, हमें देखना क्या है कि क्यामत के इम्तिहान के लिए हमें क्या पढ़ाया गया, सिलेबस क्या है, जिसकी कल पता चलनी है बात, ठीक है, क्या दुनिया में दिया गया। तो अगर हम अपने ऊपर गौर करें ना, तो अल्लाह ताला ने हमें तीन टूल्स दिए, समा, बसर और अकल, ठीक है, सुनने की ताकत, देखने की ताकत और अकल, सोचने की बात, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रूह डाल दी। रूह हमारे अंदर स्पिरिट है, सोल है। फिर तीसरी चीज़ देखिए कि अल्लाह ने हमारे नफ्स के अंदर खैर और शर का फर्क रख दिया। हमें साफ पता चल जाता है ये खैर है कि ये शर है, ठीक है। गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इल्हाम कर दिया, खैर का रास्ता ये है, शर का ये है। अब इतना कुछ करके अल्लाह ने हमें अकाउंटेबल बना दिया, किस चीज़ का, कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हो। जब खैर और बद का फ़र्क तुम्हें बता दिया था, तो क्या किया। अब आप यहाँ पे रुक जाएं, सिर्फ इतना ही दिया। कोई नबी ना आता, जिस टेक्स्ट में अब ये बात हो रही है, कोई रसूल भी ना आता, कोई किताब भी नाजिल ना होती, फिर भी अल्लाह अगर हमारा मुहासबा कर लेता क्यामत के दिन, तो क्या उसको हक था। हक था ना, क्योंकि टूल्स दिए, समा, बसर, अकल, हक और बातिल की पहचान दे दी। अगर अल्लाह ताला करता तो ठीक था, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई। लेकिन अल्लाह ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हमको रसूलों और नबियों और आज के दौर में उस्तादों और उलमा की सूरत में दे दी। बात कितनों को समझ आ गई है, ठीक है ना। तो अल्लाह ने इतमाम हुज्जत की है कि तुम करते क्या हो। सूरत बनी इसराइल की आयत 36 में आता है, इन्न सम अवल बसर वल फुआद कुल उलाई का कानान हु मसूला। बेशक तुम्हारी समात और बसारत और दिल, इन सब से क्यामत के दिन सवाल किया जाएगा। और ये जो इंसान के अंदर हक और बातिल की तमीज़ रखी है ना, इसका भी तذکرہ कुरान में, व नफ्स वमा सवाहा फलहमहा फजूरहा व तक्वाहा। इंसान के नफ्स में अल्लाह ने दोनों ताकतें रख दी, क्या उसके नफ्स में तकवा भी रख दिया और फजूर की भी बात रखी। सूरह शम्स की आयत नंबर 7 और 8 है। तो गोया के इन सारी चीज़ों को जमा करके रसूल और नबी एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें दी। और नबी कौन होते थे, अपने दौर के बेहतरीन लोग, आला किरदार, स्ट्रॉन्ग करेक्टर के। आज भी दीन का काम करने वालों को अपना करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ये जो आज दीन की इज्जत कम है ना, इसकी वजह ये कि दीनदार का करेक्टर पूरा नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। कभी मंगते बन जाते हैं, कभी कंगले दिखते हैं, कभी गरीब दिखते हैं, कभी बेठंगे दिखते हैं, कभी मस्कीन दिखते हैं, रोए धोए दिखते हैं। लोग सोचते हैं इस्लाम गरीब है, इस्लाम मस्कीन है, इस्लाम डिसऑर्गेनाइज है, इस्लाम मांगने वाला है। आप किसी भी कंपनी का कोई नुमाइंदा अपने दरवाजे पे खड़ा पाए और उसके कपड़े फटे हुए, फत्तू बना हुआ, बाल बिखरे हुए, बू आ रही, तो आप कहेंगे ये कैसी कंपनी है जिसने अपना नुमाइंदा ये भेजा। तो मैं और आप क्या हैं दुनिया में, शुहदा लिल्ला, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के दीन का काम करने वाला सिर्फ कुर्सी मेज पे या क्लासरूम के अंदर नुमाइंदा नहीं होता, वो शादियों में भी जाता है तो नुमाइंदा होता है। आप कुरान पढ़ते हैं इधर, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह कायम रखे, आप इस दौरान क्या लोगों से नहीं मिलती। 4 दिन 5 दिन हमारे पास हैं, तो बाकी वीकेंड तो आप लोगों के पास हैं। क्या आप रात को शादियों में नहीं जाती, क्या दावतों में नहीं जाते, कोई आपके नहीं आते, सब होता है ना। क्या ख्याल है, लोग आपको परखते नहीं है। अब आप कहते हैं चलो क्लास तो क्लास तक हो गई, मैं इन 2 4 दिनों में ज़रा उनको खुश कर लूँ, इन 4 दिनों में मैं अल्लाह को और अपने आप को खुश करती हूँ। आप उन 2 3 दिनों में जो करेंगे ना, उसका असर आपके बाकी 4 दिनों पे पड़ेगा। जब आम बंदा गुनाह करता है ना तो उसकी इतनी पकड़ नहीं होती। सारी बेपर्दे आप भी बेपर्दे हैं, सारे नुमाइश कर रहे हैं, शोपीस बने हुए आप भी बन जाए वो भी बन जाए, आपकी पकड़ ज्यादा है क्योंकि लिया अल्लाह हुज्जतन, हुज्जत कायम हो गई है ना, नेमते ज्यादा है। जिसके घर में है ही कुछ नहीं, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, गरीब है, सफेद पोश है, आप उसके घर जाते हैं तो, या कोई आपके आते हैं, वो एक्सपेक्ट ही कर रहा है कि आप चाय की प्याली भी पिला दें तो बड़ी बात है, कोई बात नहीं, उसको कोई गिला नहीं है, और वो कहेंगे आप बनाए भी ना। लेकिन जिसके घर में बाहर तक चीजें पड़ी हों और मेहमान के आगे वो सिर्फ खाली चाय रख दे और दिख भी रहा हो सब पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे कि इतना भी दिल नहीं था मेहमान की इज्जत कर देता, पड़ा भी हुआ है सिर्फ ला के रखने की बात है ना, फर्क होता है ना। तो आप और मैं अब बहुत अमीर हैं, करोड़पति, लखपति, और किसी को हमारी दौलत का पता तो चल जाए तो लोग डाके डाल दें कि इनके पास इतना कुछ है। अपनी कदर ना कम करें, और आपकी मेरी कदर अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बनने में है। ये जो दो किश्तियों में चलते हैं ना, ये गर्म ठंडे होते हैं फिर बीमार हो जाते हैं, फिर कभी बुखार हो जाता है तो कभी हमें फ्लू हो जाता है, क्योंकि कभी दीन की गर्मी तो कहीं दुनिया की ठंडक, कोई नहीं खुश होगा। आप अल्लाह को खुश करें, जो चाव और मान है ना घर में पूरे कर लें, शोहर के आगे कर लें, हलाल जगहों पे अपने जज्बे पूरे नहीं करेंगे ना तो दिल चाहेगा कि अब उनकी तस्कीन फिर नाजायज जगहों पे हो। हम इसको बड़ा लीनियट लेते हैं, इट्स ओके, हम तो शुरू से ऐसे थे, नहीं शुरू से आप और थे, अब हुज्जत तमाम हो गई, फिर पकड़ बड़ी सख्त आती है। और जब इस पकड़ में बंदा आता है ना तो यकीन करें कि अकल ही साथ काम दे ना तो बंदे को समझ आ जाता है। ये मांगे अल्लाह से कि अल्लाह जहां मुझे मेरी किसी सजा पे तू पकड़ते मुझे सीधा कर दे, करना क्या होगा। अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई हालत मेरी हो जाए, अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन मेरी हो तो मुझे क्या करना चाहिए, तौबतिल्लाह के नफिल, अस्तगफार दिल की गहराई से, और आके इस नेमत की कदर को करूं। मैं कहूं कि नहीं अल्लाह तू मेरे खिलाफ हुज्जत ना करना, तू मेरे हक में इस चीज को हुज्जत बना दे, वरना और कोई अब लूप होल नहीं है। या फिर एक ये रास्ता है कि सारे को छोड़ देते हैं, निमते वापस कर दें। देखिए ना, जब कोई आपको कोई कंपनी कोई गाड़ी देती है, आप ये करें वो करें, ऑफिस में आप नहीं आते तो खीर एक दिन क्या होगा, जब वो आपको छुट्टी कराएंगे तो आपसे गाड़ी भी तो ले ही लेंगे ना। या तो फिर सीधे सीधे बंदा कह दे अल्लाह अभी मेरा दिल नहीं बदलना, अभी मुझे इन नेमतों की कोई कदर नहीं, तू मुझे दूसरों जैसे बेकार कर दे, फिर हम दुनिया वालों जैसे हो जाएं तो फिर हमारी खुशी होगी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा हिसाब सख्त ना ले। और याद, आखिरी बात करके आगे चलूंगी, कि हिसाब सिर्फ आखिरत में नहीं होता, हिसाब दुनिया में भी होता है। हम सब इधर मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमें पाक करता है। नबी तो बेहतरीन लोग थे ही, उनके दामन पर तो कोई दाग धब्बा होता ही नहीं था, उनकी शख्सियात, उनके किरदार तो खुली किताब की तरह लोगों के सामने होते थे, कि लोग सादिक और अमीन कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे, गलत काम नहीं करते थे, अल्लाह ताला उनके साथ तो आसानी करता। लेकिन मुझे और आपको अपने दाग धब्बे खुद धोने पड़ेंगे। ऐसे वक्त में फिर अगर आप दूसरों के पीछे पड़ गए, दूसरों को देखने लग गए, तो याद रखिए कि फिर अल्लाह के पास हमें पकड़ने की सारी हुज्जतें मौजूद हैं। और रसूलों की जो खुशखबरियां हैं, सूरत वाकया आयत 89 में आता है, फरोहुम व रैहानुम व जन्नतु नईम, और उनके लिए तो फूल और खुशबुएं पकड़े हुए फूल जन्नत के दरवाजों पे लेके फरिश्ते खड़े होंगे जब वो अल्लाह के पास आएंगे। कौन असाबिकून अलव्वलून, आपको अल्लाह साबिकून अलव्वलून बनाना चाहता है, पायनियर्स, लीडर्स, और आप कहते नहीं मैं बैक रो में नीचे बैठ के चला जाऊंगा, कौन अकलमंद है। साबिकून अलव्वलून या असहाबुल यमीन, पूरी दुनिया के आपके इर्द गिर्द के मुसलमान अगर असहाबुल यमीन है तो आप निकलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़े, साबिकून अलव्वलून में आए, वो काम करें जो कोई नहीं करता, फिर आप देखिएगा कि कल आपको अल्लाह जो इज्जत देगा। आज दुनिया में थोड़ी सी इज्जत सुन के हमारा दिल कितना खुश होता है, तारीफ सुन के कितना खुश है, सोचिए जरा क्यामत के दिन ना खत्म होने वाली इज्जत। हमारे माँ बाप हमें देख रहे हैं, कहाँ नूर के मिम्बरों पे आप बैठे हैं, कहाँ मोतियों से और जवाहरात से जड़ी हुई सवारियों पे आप उतरती हैं, आपके माँ बाप आपको देख के क्या कहेंगे, ये देखो मेरी शहजादी आ रही है, ये देखो मेरी बेटी है, ये देखो मेरा बेटा है। क्या हम उस नेमत को सामने रखें तो ये दुनिया की नेमतें उसका कोई तकाबुल कर सकती हैं, कभी भी नहीं कर सकती। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। अजीज का मानी यहाँ पकड़ में भी आता है, बहुत पकड़ने वाला है, गालिब है। लोग तो पकड़ना चाहें भी तो दुश्मन को कभी नहीं पकड़ पाते, लेकिन पकड़ के बावजूद हर एक को नहीं पकड़ता, क्योंकि हकीम भी है, हिकमत से पकड़ता है, गालिब है, जबरदस्त है, मुहासबा भी वो सोच के करता है, उसको पता है कहाँ क्या करना है। और ये भी याद रखिए आखिरी बात, दावत और तबलीग यानी तबशीर और तंजीर, यहाँ दो ही लफ्ज है ना, नजर, इन दोनों को ही अल्लाह के नबी की सिफत बना के पेश कर दिया गया। सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 24-25 में आता है, बल्कि 25 और 26 आयत में आता है, या युहन्नबी यु इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबशिर व नसीरा व दायन इलल्लाहि बिइज़्नि बसीराजम मुनीरा। रसूल की हैसियत से हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और पुकारने वाला रब की तरफ। मुझे जितना खूबसूरत लफ्ज़ दाई इलल्ला लगता है, उतना कुछ नहीं लगता अल्लाह की तरफ बुलाने लगी। दाइया, हम दावत का काम करें, कैसा प्यार आता होगा अल्लाह को उस बंदे पे कि ये लोगों को मेरे घर की दावतें दे रहा है। किसी के घर शादी हो ना तो आप उसके कार्ड बांटते फिरें, तो लोग ये सोच लेते हैं कि आपका इससे कोई करीबी ताल्लुक है, तभी तो आप उसकी तरफ से कार्ड बांट रही हैं, दावत दे रही हैं। आप कहते हैं मैं आपको दावत देती हूँ उसकी तरफ से, तो आप जरा अपने ऊपर लें, आप लोगों को दावत दे रहे हैं कि आओ मेरे रब की तरफ, तो रब से ताल्लुक है तभी है ना। और सिराज मुनीरा होंगे कब, जब हिदायत का सूरज बन के चमकेंगे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। सूरत तौबा की आयत 33, सूरत फतह की आयत नंबर 28-28 और सूरत सफ की आयत नंबर 9 यानी 9, तीनों में अल्लाह ताला ने नबी की सिफत को इस रंग में पेश किया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसको पूरे दीनों पर गालिब कर दे। तो ये थी अल्लाह के नबी की बेहतर शान, और ये था आपका मुकामे बेसत। लेकिन लोगों ने क्या किया, आगे पढ़ेंगे तो फिर दिल दुखता है हमारा। चलते हैं आयत 166 पे, लाकिन अल्लाहु, लेकिन अल्लाह, यशहदु, गवाही देता है, क्या, बिमा अनज़ला इलैक, इस चीज़ की जो आपके ऊपर उसने नाजिल की, क्या, के अनज़लहू बिइल्मिही, नाजिल किया है उसको इल्म के साथ। और क्या सिर्फ अल्लाह ही गवाही देता है, नहीं, वल मलाइकतु यशहदून, और फरिश्ते भी इसकी गवाही देते हैं। हालांकि वकफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह की गवाही ही काफ़ी थी। एक स्ट्रेच में पढ़ लें तो क्या मफहूम बना, लेकिन अल्लाह गवाह है कि जो कुछ इसने नाजिल किया है नबी आपकी तरफ, वो इसने नाजिल किया है अपने इल्म से, और फरिश्ते भी इस पर गवाह हैं। अगरचे अल्लाह अकेला ही काफी है गवाह होने के एतबार से। इससे मिलती जुलती आयत अपने पीछे पड़ी, वो गवाही किस चीज पे थी जो सूरत आल इमरान के शुरू में पड़ी, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, ग़ालिबन आयत नंबर 12-13 यानी शुरू के पहले दो रुकू के अंदर ही थी। वो गवाही थी अल्लाह के इलाह होने पे, याद है आपको। ये गवाही किस पे है, कुरान के हक होने पे। नोट कीजिए फर्क दोनों का, अल्लाह ने इस कलाम के सच होने पे खुद भी गवाही दे दी, फरिश्तों की गवाही भी दे दी। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि अल्लाह की जात जब किसी जगह गवाह बन जाती है तो उसका क्या मुकाम है हमारे सामने, और हम उसको कैसे सोचें और किस तरह एक अपने आप को लें। लेकिन इतनी हुज्जतों के बावजूद भी लोग नहीं मानते। मैं तो ये हैरान हूँ कि जब अल्लाह ने ये गवाही दे भी थी, लेकिन इसके बरक्स आयत 167 देखिएगा, दोनों को साथ मिलाएंगे बाद में, इन अल्लज़ीन कफरू, और बेशक जिन लोगों ने कुफर किया यानी खुद रुके, वसद्दु अन सबीलिल्लाह, और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोका, कद्दलु दलालम बईदा, बेशक वो तो बहुत दूर की गुमराही में भटक गए। यानी अब आखिरी रसूल के आने के बाद भी जो लोग कुफर पर अड़े रहे, अल्लाह के रास्ते से रुके रहे, दूसरों को भी रोकते रहे, तो फिर वो तो भटकने और बहकने में, गुमराही में बहुत दूर चले गए। क्या होगा ऐसे लोगों के साथ, आयत 168, इन अल्लज़ीन कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, बस ज़लमू, और जुल्म का शिकार हुए, जुल्म के नीचे लिख लीजिए शिर्क, लम यकुन अल्लाहु लियग़फिर लहुम, हरगिज़ नहीं कि बख्शेगा उनको अल्लाह, यानी अल्लाह विल नेवर फॉरगिव देम, और दूसरा इनके साथ अल्लाह ताला का इंतकाम क्या, वला लियहदियहुम तरीका, और ना उनको किसी रास्ते की हिदायत देगा, यानी अल्लाह सुब्हान तआला विल नॉट गाइड देम, हाँ मगर एक ही रास्ता दिखाएगा। आयत 169, इल्ला तरीक जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, सिवाय जहन्नम के रास्ते के जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। अल्लाह अकबर। आप इन सारी आयतों को सामने रखें और पिछले पारे की आखिरी आयत, आयत 147 निसा को जहन में रखिए। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वहां क्या था? अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? अल्लाह ताला ईजा पसंद नहीं है, सैडिस्ट नहीं है अल्लाह ताला कि तुम्हें तकलीफें दे, लोगों को अजाब में रख के उसको खुशी हो। देखिए दुनिया के जो बड़े जालिम बादशाह गुजरे ना, तो उनका फन क्या होता था आपको पता है? एक जगह ऐसी, मुझे एक सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने बताया, और मेरा बल्कि दिल भी चाहा कि खैर जो चीज़ तो अच्छी नहीं, लेकिन उन्होंने जिस मुल्क से थी, नाम नहीं लूंगी मैं, किसी इलाके की बात है, तो कहती हैं कि वहाँ एक जगह, एक खास एरिया ऐसा बना जिसकी मिट्टी बिल्कुल सुर्ख रंग की है। वो क्या है? पुराने दौर के जो बादशाह थे उनका पसंदीदा मशगला क्या था कि जब उनको फन या गेम्स या खेल देखने हैं ना, जैसे अपने फन के नाम पे, तो वो उस मैदान के इर्द गिर्द मसनदे से जाते थे और उस मैदान में भूखे शेरों को बुलाते थे, कई दिन तक शेरों को भूखा रखते और फिर बाद में उस मैदान में एक एक करके अपने गुलामों को फेंकते, और वो सबके सामने शेर उन गुलामों को चीरते फाड़ते, और ये बादशाह जो थे देख के खुशियां मनाते थे, और कहते आज वो जमीन सुर्ख एक निशानी के तौर पर रख दिए कि ये बादशाहों का मैच देखने का जगह थी। कैन यू बिलीव दिस? दुनिया में दौलत का नशा बंदे को इस तरह के जुल्म पे माइल करता है, लेकिन अल्लाह तुमा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। अब उस आयत में तो इतनी बातें पड़ी, और यहाँ आप देखे मुसलसल 3 आयतों के बाद, किल्ला तरीक जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, शिद्दतें नहीं है जिसको आप कह लें कि वो बंदा जो किसी ठंडे मिजाज के बंदे को भी गुस्सा दिला दे, सोचिए जरा फिर उसने कितनी बड़ी बात की होगी। एक बहुत बड़ा मुहावरा गालिबन, हदीस तो मैं नहीं कहती, मेरे जहन में इस वक्त, कि उससे भी कोई बुरा होगा जो किसी तहम्मुल वाले इंसान को गुस्से में डाल दे। कुछ लोग होते हैं ना, वो तो बात बात पे भड़कते हैं, उनके तो पाँव में को आग लगी हुई है, जरा सी बात पे बढ़ के मारने लग जाते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ बड़े ठंडे होते हैं, कभी नहीं बोलते, कभी उनको गुस्सा नहीं आता। अब किसी वक्त अगर आप उनको गुस्से में देखें तो कोई वजह हो कि ना? कुरान पाक में अल्लाह ताला का फिरौन और उसकी कौम के बारे में आता है कि ये फिरौनी जिन्होंने अल्लाह को गुस्सा दिलाया, आसफू के लफ्ज हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह अपने मिजाज के एतबार से जालिम नहीं है, इसका जाब्ता और कानून है। ये लोगों को ढील देता है, लोगों को पूरा मौका देता है, जब लोग उस मौके का फायदा नहीं उठाते, बार बार की तंबीहात और डरावों के बावजूद नहीं डरते और मुतनब्बे नहीं होते, तो फिर अल्लाह ताला बंदों को पकड़ता है, फिर ऐसे पकड़ता है। याद रखिए कि बाप बच्चों को डांटता है ना, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, फिर माँ कहती है मैं तुझे कच्चा चबा दूंगी, क्या मान रहती है? माँ करती है, करना चाहती है? कभी नहीं, सिर्फ उसका एक ड्रावा होता है। माँ के लिए तो अपने बच्चे को बड़े से बड़े कसूर पर भी आग में डालना मुमकिन नहीं लगता, हाँ, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह डाल दे। और बाज़ लोग जो सूफी मिजाज के होते हैं ना, जरा बहुत ही मतलब अल्लाह की मोहब्बत में वो सुन्नतों को भी हटा देते हैं समटाइम, तो वो कहते हैं देखो अल्लाह कभी आग में डाल सकता है? इज इट पॉसिबल? तो कोई नहीं आग, बस तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो, जो मर्जी करो कुछ नहीं होगा। देखिए अल्लाह को कोई रोब में नहीं ले सकता, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उसने बता दिया कि जब तुम मेरे तहम्मुल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो तो फिर मैं तुमसे बदले लूँगा। वो एक शेर भी है ना कि ना जा उसके हिल पे, बड़ी सख्त उसकी पकड़ है, बड़ी देर से पकड़ते हैं लेकिन जब पकड़ते तो बड़ा सख्त पकड़ते हैं। और आपका भी ये मुशाहिदा होगा कि जिस बंदे को गुस्सा नहीं आता ना, और जब आ जाता है तो अल्लाह की पनाह, फिर दूसरे भी डर जाते हैं कि आज इसको क्या हो गया, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, अल्लाह कहता है मेरे लिए इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है कि सबको आग में डाल दूँ। पिछले एक या दो लेसन पहले बताया था कि सारी दुनिया के लोगों को अगर आग में डाल देना तो इसका अदल है, कोई नहीं कह सकता क्यों डाला, और अगर सबको अल्लाह जन्नत दे दे तो ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता। इसी तरह ये बात कहते हुए मुझे एक और आयत याद आ रही है जो पीछे हमने पढ़ा सूरत आल इमरान में, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, लोग अल्लाह तुम्हें अपनी जान से डराता है, पढ़ी थी याद है? तर्जुमा दे देते हैं जब टेस्ट, तो फिर तो याद हो जाती होंगी कुछ आयतें। यानी अल्लाह की ज़ात इतने हिल्म के बावजूद भी लोगों को अपनी ज़ात से डराती है, तो अल्लाह से डरना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात बड़ी सख्त है। हम अपने आप को कभी भी अल्लाह की पकड़ से बेनियाज ना समझें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हम सब की मदद करती है। हम अपने आप को क्यों नहीं इस बात पे लेके आते। अब यहाँ पे देखिए, वो बात पूरी हुई जिस सारी बात का ताल्लुक अल्लाह ताला की यानी हुज्जत से था। अभी तक जितनी बात हमने पढ़ी उसका खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबी भेजे इतमाम हुज्जत के लिए, अल्लाह ने इंसान को सेंसेस भी दी ताकि इनको अच्छा यूज़ करो तो फिर तुम जन पाओ, और रसूलों को भेजा तो मुबशरीन और मुनजिर बना के भेजा, अच्छी बातें करें, लोगों को बुराई से रोकें, और आखिर में अल्लाह ने यह भी बता दिया कि मैं जालिम नहीं हूँ अपने मिजाज से। लेकिन जब लोग मेरी पकड़ को नहीं समझ पाते तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बुरा करेगा।